ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नाष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैशिकीम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। सह विस्मयोत्फुल्ल विलोचन हरिम सुतम विलोक्य आनकदुन्दुभिः तदा कृष्णावतारोत्सवः। संभ्रमः अस्पृशत् मुदा विजेभ्यः अयुतम् आप्लुतः गवाम्। सवेश्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम्, सवेश्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम् सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा, सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा। कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्, मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। सवेश्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम्, सवेश्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम् सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा, सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा। कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्योद्युतमाप्लुतो गवाम्, मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। सवेश्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम् सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा, कृष्णावतारोत्सव सम्भ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्य ಯೋಯುತಮಾಪ್ಲುತೋ ಭವಾಂ ಸವೇಶ್ವಯೋದ್ಬುಲ್ಲವಿಲೋಚನೋ ಹರಿಂ ಮುಖ್ಯಾನಗದುಂದುಭಿಸ್ತದಾವದೋಸುಂಭ್ರಮೋತ್ಪುಷನ್ ದೇವ್ಯೋತ್ಮಾಪ್ಲುತೋ ಭವಾನ್ ಲೋಚನೋ ಹರಿಂ ಸುತಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಕದುಂದುಭಿಸ್ತದಾವತಾರೋ ಸಂಭ್ರಮೋಸ್ಪೃಶನ್ ಭವಂ ಲವಿಲೋಚನೋ ಹರಿಂ ಸುತಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಕದುಂದುಭಿಸ್ತದಾ ದೃಷ್ಟಾವರ ಸ್ವ ಸಂಭ್ರಮೋ ಸ್ಪೃಶನ್ ಮುದಾ ವಿಜೇಭ್ಯೋ ಯುತಮಾಪ್ಲುತೋ ಭವಾಂ ವಿಲೋಚನೋ ಹರಿಂ ಸವ ಸಂಭ್ರಮೋಸ್ಪೃಶನ್ಮೋದ್ವಲ್ಲವಿಲೋಚನೋ ಹರಿಂ ಸುತಂ ವಿಲೋಚಾನಕದುಂದುಭಿಸ್ತದ ಸಂಭ್ರಮೋ ಸ್ಪೃಶನ್ ವಿಲೋಚನೋ ಹರಿಂ ಲೋಕ್ಯಾನಕವೃಂದುಭಿಸ್ತದಾವತಾರೋಸುಂಭ್ರಮೋಸ್ಪೃಶನ್ ದೇವ್ಯೋ ನಮಾಪ್ಲುತೋ ಭವಾನ್
ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ ಸಹ वह वसुदेव जो आनक बिंदु भी कहलाते हैं विस्मय उत्फुल्ल विलो उत्फुल्ल हाँ विस्मय उत्फुल्ल विलोचन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने से आश्चर्यचकित आंखें हरिम भगवान हरि को सुतम पुत्र रूप में विलोक्य देखकर आनक दुंदुभिः वसुदेव द्वारा तदा उस समय कृष्णावतार उत्सव कृष्ण के आविर्भाव पर उत्सव मनाने के लिए संभ्रम सम्मान के साथ भगवान का स्वागत करने की इच्छा अस्पृशन बांटने का अवसर प्राप्त किया मुदा अत्यधिक हर्ष के साथ विजयभ्यः ब्राह्मणों को अयुतम 10,000 आप्लुतः विभोर गवाम गायें। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से विस्फुरित हो गई। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन द्वारा 1,000 गांवों एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरण कर दिया, मानो कोई दिव्य उत्सव हो। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने वसुदेव के अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया है। वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्रों तथा रत्नों से विभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य बालक नहीं अपितु चतुर्भुजी भगवान है, जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए हैं। पहला आश्चर्य यह था कि कंस के उस बंदी गृह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं, जिसमें वसुदेव तथा देवकी बंधे थे। दूसरा यह था कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी वे देवकी की कोख में पैदा हुए। तीसरा आश्चर्य यह कि कोख से जन्म लेने वाले बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत था। चौथा यह कि भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, फिर भी वे उन्हें पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इन कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे, अतएव वे क्षत्रियों की तरह पुत्र का जन्मोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करने में आश्चर्य थे असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने यह उत्सव मन में ही मना लिया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि कोई भगवान की सेवा बाह्यतः नहीं कर सकता है तो वह मन में भी उसकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के लिए समान होता है। यह अद्वैत ज्ञान कहलाता है। लोग सामान्यतः पुत्र जन्म पर कर्मकांडीय उत्सव मनाते हैं, तो फिर वसुदेव ऐसा उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे, जबकि भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं हुए हो। ओमज्ञातविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮೇಹಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಾಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೌ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸದೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಿತಾ ಶಿವಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೌ ದೀನಬಂಧೌ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಕ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಅಭಿ ತೀಸರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಹೈ ಅಜನ್ಮ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಹೈ ಜನ್ಮ ಹೋನೆ ಪರ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೋ ಸುಂದರ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಭೀ ಹಮಕೋ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಇಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಹುವಾ ಹೋತೇ ಹಿ ಸಾರೇ ಜಿತನೆ ಭೀ ಗಂಧರ್ವ ಹೈ ಕಿನ್ನರ್ ಹೈ ಚಾರಣ ಹೈ ಸಿದ್ಧ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಆನಂದ ಸೆ ನಾಚನೆ ಲಗೆ ಔರ್ ಗಾನ್ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ ಔರ್ ಗಾನ್ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಸಭಿ ಲೋಗೋನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಜೋ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿ ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಹೈ ಅಭಿ ಪೂರ್ಣ ತರೀಕೆ ಸೆ ವೋ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೆ ಔರ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ದೇಖ್ ಪಾ ರಹೆ ಥೆ ಔರ್ ಅಂತತಃ ವಸುದೇವ್ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಇಸ್ ಸುಂದರ್ ಬಾಲಕ್ ಕೋ ದೇಖಾ ದೇಖತೆ ಹಿ ಉನ್ಕಾ ಜೊ ಸುಂದರ್ ಆಂಖೆ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಚತುರ್ಭುಜ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಹೈ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕಾ ಚಿನ್ನ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಜೊ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಜೈಸೆ ಉನ್ಕಾ ಶರೀರ ಹೈ ಔರ್ ಕೌಸ್ತುಭ್ ಮಣಿ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ್ ಏಕ್ ಮುಕುಟ್ ಹೈ ಔರ್ ಕುಂಡಲ್ ಹೈ ಔರ್ ವೈಢೂರ್ಯ ಮಣಿಯೋಕೆ ದ್ವಾರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹೈ ಇಸ್ ಬಾಲಕ್ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ್ ಕೋ ವಸುದೇವ್ ನೆ ದರ್ಶನ ಕಿಯಾ ಜೈಸೆ ಉನ್ಹೊನೆ ದರ್ಶನ ಕಿಯಾ ತೋ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಜೊ ಜವಾಬ್ ಹೈ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಹಮಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ಯಾನಿ ದೂಸರೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ವಸುದೇವ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಪುತ್ರ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಸ್ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ವಿಚಾರ ಆಯಾ ಔರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಅನುಭವ ಉನ್ಹೊನೆ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ ಉನ್ ಬಾತೋಂ ಕೋ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಹಮ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಯಾ ಪಹಲಾ ಶಬ್ದ ಹೈ ಸಹಾ ಯೇ ಸಹಾ ಶಬ್ದ ಸೂಚಿತ ಕರ್ತಾ ಹೈ ವಸುದೇವ್ ಕೋ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪಿಛಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಐಸಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ವಸುದೇವ್ ನೆ ಇನ್ ಪುತ್ರ ಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ದೇಖಾ ತಬ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಯೇ ಸಹಾ ಶಬ್ದ ಕೆ ದ್ವಾರ ಸೂಚಿತ ಕಿಯಾ ಜಾಯ ವಸುದೇವ್ ನೆ ದೇಖಾ ತೋ ದೇಖಕೆ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಸಹ ವಿಸ್ಮಯ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಹೋಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ ಸ್ಟಕ್. ಪಹಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಸುಂದರ ಶರೀರ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ವೋ ಅದ್ಭುತ ಹೈ ಅಗರ್ ಕೋಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕೋ ದೇಖತಾ ಹೈ ಅದ್ಭುತ ಚೀಜ್ ಕೋ ದೇಖತಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಅನುಭವ ಹೋತಾ ಹೈ ಅದ್ಭುತ ರಸ ಕಾ ಆಸ್ವಾದನ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಶುರುವಾತ್ ಮೇ ಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಹೋನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಕಿ ವಸುದೇವ್ ಕೋ ಈ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಕ್ಯಾ ಪಾನ್ ಕರಾಯಾ ಅದ್ಭುತ ರಸ ಕೋ ಪಾನ್ ಕರಾಯಾ. ಪಾಂಚ್ ಪ್ರಕಾರ ರಸ ಹೋತಾ ಹೈ ಶಾಂತ ದಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಔರ್ ಮಾಧುರ್ಯ साथ साथ में ये पांच प्रकार के रसों के साथ साथ में सात प्रकार के और गौण रस होते हैं। उनमें से एक गौण रस है, वो है अद्भुत रस। तो ये अद्भुत रस को भगवान ने सबसे पहला वसुदेव को पिलाया। ही वसुदेव एक्सपीरियंस इस अद्भुत रस। उनको कभी कभी व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। विचारी भाव का अर्थ यह है कि थोड़ा क्षण मात्र के लिए रहता है और चले जाता है। तो सबसे पहला वसुदेव ने सह विस्मयहा, तो ये विस्मयहा शब्द अति महत्वपूर्ण है। तो वसुदेव का ये अद्भुत रस को भगवान ने कैसे पिलाया, बड़े सबसे पहला आश्चर्य। और वसुदेव को क्यों हुआ, क्या हुआ? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चार कारण लिखते हैं कि वसुदेव के मन में चार आश्चर्य प्रकट हुए। फोर काइंड्स ऑफ अद्भुत, फोर काइंड्स ऑफ वंडर। क्योंकि कोई भी वंडरफुल चीज को देखेंगे यू स्टार्ट वंडरिंग, अरे कैसे हो सकता है ये, कैसे संभव है। सबसे पहला अद्भुत रस को भगवान ने वसुदेव को किस प्रकार पिलाया? भगवान का प्राकट ही अद्भुत है। क्या अद्भुतता है? कि भगवान अप्राकृत है, उनको इन आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते हैं। प्राकृत आंखों के द्वारा अप्राकृत भगवान को देख नहीं सकते। तो ये ज्ञान वसुदेव को था। तो वसुदेव ये देख रहे हैं कि मेरा तो अज्ञान से भरा हुआ शरीर है, अज्ञान से बंधा हुआ हूँ। साथ साथ में केवल अज्ञान का ही बंधन नहीं, बल्कि ये जो जेल का बंधन भी है, दो प्रकार का बंधन है। एक तो शरीर भी बाहर नहीं जा सकता मेरा, और साथ साथ में मैं ये जो तीनों गुणों के द्वारा ही बंधा हुआ हूँ, और साथ साथ में जेल के द्वारा भी बंधा हुआ हूँ। तो ये आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण अभी वो प्रकट हुए और उनको मैं देख सक रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो भगवान का जो विशेष कृपा है, वो कृपा इस रूप में वसुदेव के ऊपर आया। तो वसुदेव सोचने लगे, मेरे ऊपर इतना अत्यंत कृपा किया, हाँ मैं इनको देख पा रहा हूँ। ये एक रस था, एक कारण था वसुदेव का आश्चर्य का। दूसरा कारण ये था कि भगवान वो सर्वव्यापी है। शास्त्र में तो उनका वर्णन हुआ है, वो उनका उनसे सारा जगत उत्पन्न होता है और सभी लोगों के पिता है। लेकिन अभी मेरी पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, तो अगर वो सर्वव्यापी हैं, वो ऐसा कैसे कि मेरे गर्भ से, मेरे पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए? तो ये भी आश्चर्य की बात है, उनका भी एक प्रकार का ये आश्चर्य हुआ। तो तीसरा आश्चर्य का कारण ये था, भगवान तो प्रकट हुए। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गर्भ से रोते रोए प्रकट होता है, उनके शरीर में मल मूत्र लगा हुआ रहता है और अनेकों प्रकार और रोता रहता है। उनका जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाभि, माँ के नाभि के साथ, बच्चे के नाभि के साथ कनेक्शन रहता है, तो वो सब रहता है साधारण बच्चे का जन्म होता है। तो अभी ये जो बच्चा है, ये ऐसा कैसे प्रकट हुआ? उनके चार हाथ है और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं और वापस मन में स्मरण कर रहे हैं जो भगवान की जो रूप को जो देखा उन्होंने, उसी देखा हुआ स्वरूप को वसुदेव मन में वापस स्मरण कर रहे हैं। अस्तित्व में अगर कोई अद्भुत चीज को देखोगे तो हमारे मन से वो जल्दी जाता नहीं है, तो बार बार उसका स्मरण होता रहता है। तो ये भगवान सबसे आश्चर्यात्मक या सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। तो वसुदेव ने कृष्ण का ये अद्भुत स्वरूप को देखने के बाद, जैसे साधारण जगत में भी हम देखते हैं कोई वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ना सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो देखोगे आश्चर्यचकित हो जाता है, ऐसे कैसे बनाया, इसको कैसे किया, इतना बड़ा एक दीवार बनाया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इतना बड़ा महल बना दिया। तो उसको देखने के बाद हम उसको भूल नहीं सकते, इसको वंडर बोलते हैं। मान लो कोई अद्भुत वस्तु को आपने देखा, अद्भुत चीज को देखा, देखने के बाद उसके सामने से हट जाने के बाद भी आपके मन में बार बार घूमता रहेगा। इसलिए वसुदेव भगवान का ये जो स्वरूप है वापस स्मरण किया। स्मरण करके वो ये सोचने लगे कि ये इससे कैसे हो सकता है, बच्चे का जन्म, साधारण बच्चे का जन्म तो इस प्रकार नहीं होगा। तो निश्चित रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो ये बात को समझ के थोड़ा सा और वसुदेव थोड़ा शांत हो गए। लेकिन बाद में वसुदेव ये चौथा चीज के बारे में विचार करने लगे, अस्तित में मैंने प्रार्थना किया था, उनको याद आया कि जब मेरा जन्म हुआ था तब उस समय सारे देवता लोगों ने डिंडोरा पीटा था, आनसा और दुंदुबी ये दोनों को उन्होंने बहुत पीटे थे, और उसी समय ये घोषणा किया गया था कि मेरा पुत्र का जन्म होने वाला है या भगवान मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। अभी वो खाली भविष्यवाणी था, अभी भविष्यवाणी क्या हुआ, सत्य हुआ। अगर मान लीजिए आपको कोई भविष्यवाणी कोई करता है आपके विषय में, तो वो सुनने के द्वारा इतना आपको आनंद नहीं आता है, मान लो सुन लिया तो 10 मिनट एक घंटा दो दिन के लिए रह जाता है, बाद में वो भविष्यवाणी भूल जाओगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो सत्य होता है, हाँ तो भरे वो बोला था, हाँ बराबर है, सही बात है, तो आश्चर्य होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार का आश्चर्य वसुदेव भी अनुभव करने लगे, हाँ हाँ लोग बोले थे, जब मैं थोड़ा सा होश में आया था कि मेरा नाम भी आनक दुंदुबी है, और लोगों ने बताया था कि भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं मेरे मेरे पुत्र के रूप में, तो ये भविष्यवाणी अभी साक्षात सत्य हो गया है। तो ये बात को स्मरण करके वो और आश्चर्यचकित हो गए। इतना ही नहीं, तो और एक बात ये है कि भगवान का ये विषय में और एक आश्चर्य की बात ये था, उसी के विषय में, उसी के चौथे पॉइंट के विषय में वसुदेव सोचने लगे, भगवान जो हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, वो स्वयं भय जो है उनसे भयभीत हो जाता है, लेकिन अभी मेरे भय से, यानी भगवान ने वचन दिया था वसुदेव को 3 बार मैं आपके जन्म आपके घर में प्रकट होऊंगा, आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, हाँ पृष्ठ सुतपा पृष्ठ। तो वसुदेव सोचने लगे भगवान किसी से डरते नहीं है, लेकिन भक्तों का वचन दिया है वो वचन को तोड़ने का जो डर है, वो डर से वो इस जगह पे जेल में भी आके प्रकट हो गए। वैसे भगवान को उचित जगह नहीं है जेल, लेकिन फिर भी हम जेल में हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों को वचन को तोड़ने का जो डर है, वो डर की वजह से वो जेल में भी आके मेरे सामने प्रकट हो गए। तो ये इस प्रकार का आश्चर्य को वो अनुभव करने लगे वसुदेव। तो ये वसुदेव का ये 4 प्रकार का आश्चर्य अति महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे कहा कि वात्सल्य रस में भक्तों का अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है, अलग अलग प्रकार के जो गौण रस को अनुभव होता है, उनमें से आश्चर्य जो है ये अधिकांश हमको पाया था आश्चर्य रस का अनुभूति। जैसे भगवान ने यशोदा माई को भी आश्चर्य रस का अनुभव कराया था, तो लेकिन यशोदा माई और नंद महाराज का जो आश्चर्य रस का जो अनुभूति में और इधर वसुदेव का आश्चर्य रस का अनुभूति में थोड़ा सा अंतर है। उसके विषय में श्री विश्वनाथ शेखर ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक में 2 शब्द है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हरिम सुतम विलोचनो हरिम सुतम। तो अपनी आंखों के द्वारा उन्होंने जैसे उनके पुत्र को देखा आश्चर्य को अनुभव किया, और जैसे उनके पुत्र को देखे आश्चर्य के साथ में वसुदेव को ये ज्ञान था। क्या ज्ञान था? ये जो सामने जो मेरा पुत्र है सुतम, वो कोई और नहीं है, वो हरि है। तो इसलिए कहा जाता है कि वसुदेव का जो कृष्ण के साथ जो संबंध है, वात्सल्य का संबंध है, वो कैसा था? ये संबंध है उसको ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य कहा जाता है। केवल वात्सल्य नहीं कहा जाता है, यशोदा मई को भी भगवान आश्चर्यजनक हो गई थी जब उनके मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड को दिखाया था। तब यशोदा मई ने ये नहीं सोचा कि मेरा पुत्र जो है भगवान है, हरिम करके उनको ये ज्ञान नहीं था। तो ये ही अंतर है। इसलिए वसुदेव और देवकी ये बाद में हम देखते हैं कि वो प्रणाम करते हैं पुत्र को। पुत्र को प्रणाम करना ये कोई ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी बात नहीं, इसके थोड़ा सा वात्सल्य का जो रसास्वादन जो है उसमें ये ऐश्वर्य ज्ञान जो रुकावट पहुंचाता है। क्योंकि अगर एक माँ है वो जानती है मेरा बच्चा है तो बच्चे के रूप में देखभाल करेगी, लेकिन उसको मालूम पड़ जाता है मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो ये जो ज्ञान है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो उनकी वात्सल्य के आस्वादन में थोड़ा रुकावट पहुंचाता है। तो इसलिए इधर ये जो शब्द है हरिम सुतम, इसके ऊपर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि वसुदेव को ये ज्ञान हो गया, स्पष्ट रूप में ज्ञान हो गया, सामने जो मेरे सामने पुत्र के रूप में खड़ा है वो भले ही मेरा पुत्र के रूप में आए हैं लेकिन मूलतः वो कौन है, वो हरि है, वो साक्षात भगवान है। तो ये ज्ञान की वजह से आगे हम देखते हैं वसुदेव और देवकी वो दोनों उनको प्रणाम करते हैं, देव पे ओबिशंसिस। वैसे बड़ा सुंदर आगे कथा आती है किस प्रकार वो प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना ऐसी आती है, देवकी कहती हैं, वसुदेव देवकी कहते हैं अभी आप महान हो, आप सारे शक्तिशाली हो, आपसे ही सारा जगत उत्पन्न होता है। और बाद में कहते हैं कि अभी कंस आ जाएगा, आप जल्दी ये जो रूप है इसको छोड़ दीजिए और साधारण सा बच्चे का रूप धारण कर लीजिए, अगर कंस को मालूम पड़ेगा आप भगवान हो तो आपको मार देंगे। तो भगवान कहते हैं अरे आपने तो अभी तो कहा मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ, अभी तुम तुरंत वापस प्रार्थना करते हो, कंस का डर क्यों है आपको। तब देवकी कहती है कि मैं क्या करूं, आप मैं जानती हूँ आप भगवान हो लेकिन पुत्र हो ना, तो पुत्र का मोह तो रहेगा। इसलिए एक सबसे बड़ा विस्मय की बात यह है, एक तो हरि है मालूम है और साथ साथ में दूसरी बात में कौन है, वो उनका पुत्र है। इसलिए एक बड़ा बड़ा समस्या होगी वसुदेव को, अभी क्या समझूं, मैं पुत्र के रूप में देखूं या उनको आपको भगवान के रूप में देखूं। ये सबसे बड़ा विस्मय का कारण था, ये मूल कारण था, इट वॉज द रूट कॉज ऑफ ऑल कंफ्यूजन। वसुदेव के मन में ये जो कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन का मूल क्या था कि आप मैं पुत्र के रूप में देखूं कि आप भगवान के रूप में देखूं। लेकिन यशोदा माई के रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं था, आया भी था थोड़ा सा दिखने लग जाता लेकिन बाद में ये थी मेरा पुत्र है इसी के रूप में देखती थी। तो अभी हरिम सुतम, बाद में और एक शब्द आया सुतम विलोक्यानक दुंदुबिस्तदा, आनक दुंदुबिस्तदा। तो हम आनकदुंद के बारे में थोड़ा बहुत पहले कह चुके थे कि इस प्रवचन में आनकदुंदुबी का अर्थ यह है कि वसुदेव का नाम और एक नाम है आनकदुंदुबी। उनका जन्म के समय में जो दिंदोरा पीटा गया था उसकी वजह से सब लोगों ने घोषणा किया कि उनके जो घर में उनका पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो आगे कृष्णावतार उत्सव, अभी जैसे उनका भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव भगवान का ये दर्शन करते हुए, सबसे पहला उनका सुंदरता का दर्शन करते हुए उनके मन में बहुत आनंद का अनुभव हुआ। जैसे आनंद का अनुभव हुआ भगवान का सुंदर दर्शन करने से, उस आनंद में उन्होंने सोचा कि जब किसी के घर में पुत्र आता है तो सबसे पहला उत्सव मनाना चाहिए। हाँ, और इतना ही नहीं, मेरे घर में स्वयं भगवान प्रकट हुए तो अब देखो कितना बड़ा उत्सव मनाना चाहिए मुझे। एक साधारण सा बच्चा जन्म लेता है, हर माता पिता सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ उत्सव मनाना चाहिए, तभी तो स्वयं भगवान प्रकट हुए। इससे प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में लिखते हैं कि जब किसी घर में पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग कुछ ना कुछ उत्सव मनाते हैं, तो फिर वसुदेव ऐसे उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे जबकि भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हो। यानी एक आश्चर्य की बात, एक क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, वसुदेव को तो मनाना ही चाहिए। तो इनके मन में और एक बात आई कि अभी ये तो हरि है भगवान है लेकिन ये तो बात की बात है, चलो मेरे घर में पुत्र हुआ है। तो सबसे पहला वसुदेव ने इस बात को सोचा कि मेरे घर में पुत्र हुआ है तो वो साक्षात भगवान है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। अभी इधर कृष्णावतार उत्सव, इसके विषय में कृष्णावतार, कृष्ण शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसके विषय में श्रीपाल वल्लभाचार्य कहते हैं कि वसुदेव ने जब इस पुत्र को देखा तो उनके अंदर अनेकों अनेकों गुण हैं, कृष्ण के अंदर अनेकों अनेकों गुण हैं, उस बालक के अंदर अनेकों अनेकों गुण हैं, वो भगवान है, वो दिव्य है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है, ये सब कुछ है, लेकिन बालक का जो सुंदरता जो है वो वसुदेव को आकर्षित कर दिया। यानी कृष्ण का जो सुंदरता को देखते ही वसुदेव थोड़ी क्षण के लिए इस बात को भूल गए कि वो भगवान है, वो हरि है, सर्वव्यापी है। तो कृष्ण का सुंदरता इतना अद्भुत है, उस सुंदरता के अंदर कोई आकृष्ट हो जाता है तो भगवान की भगवत्ता को भूल जाता है। तो वसुदेव ज्ञान, ये जो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वात्सल्य भक्त होने पर भी कृष्ण का ये जो सुंदरता का विशेषता ये है कि वो हर चीज को भुला देता है भक्त का। इसलिए कृष्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कृष्ण जो है सर्वाकर्षक होने के नाते कृष्ण जैसे उनके सामने प्रकट होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब भगवान के सामने आते हैं तुरंत भगवान की जो सुंदरता, इवन विग्रह के सामने भी आते हैं, अगर बहुत प्रेम से अगर विग्रह का दर्शन करेंगे उस समय हम इस बात को भूल ही जाते हैं भगवान है, केवल यही स्मरण में आता है कितना सुंदर है, मैं उनको कुछ करूं, मैं उनको कुछ खिलाऊं, मैं उसका कुछ सेवा करूं, यही बात आता है। तो यूं भगवान शब्द ऐसी चीज है वो सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है, भले ही वास्तविकता में भगवान शब्द जो है इसको सूचित किया जा रहा है कि वो सर्वाकर्षक है। हाँ, तो इसलिए इधर कृष्ण शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि भगवान या परमात्मा या अन्य शब्द को क्यों इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इधर वसुदेव कृष्ण की सुंदरता को देख के वो एकदम उनका मन जो है मन के अंदर आनंद को अनुभव किया, उस आनंद में उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, मुझे कुछ उत्सव मनाना है, कृष्णावतार उत्सव, और वो भी कैसे मनाना चाहिए, शब्द इस्तेमाल किया है संभ्रमो संभ्रमः। ये जो संभ्रम शब्द हम ब्रह्म संहिता में भी सुनते हैं, ये संभ्रम शब्द अति महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ये संभ्रम के विषय में, संभ्रम का ऐसे संस्कृत भाषा के हिसाब से शब्द देखा जाए सम्यक रूपेण भ्रम, यानी संपूर्ण रूप में भ्रमित हो जाना। तो इधर संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम से उत्सव मनाना का निश्चय किया, उनके अंदर संभ्रमता हुई। इस संभ्रमता का अर्थ क्या है, थोड़ा सा हम जाते हैं महाभारत में, आप सब जानते हो जब भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने निमंत्रण दिया था, हाँ, कि आप आइए मेरे घर में, आप प्रसाद लीजिए, तो दुर्योधन के घर में कृष्ण जा रहे थे, मैंने सोचा कि क्या इनके घर में जाना, भी इसके पास नहीं जाना मुझे, ऐसा सोच के वो थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेके विदुर के घर में गए। विदुर को मालूम नहीं था कि कृष्ण आने वाले हैं, विदुर उस समय घर में नहीं थे, कि विदुरानी थी, उनकी पत्नी थी। कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया तो दर से दरवाजा खोला, सामने कौन है, कृष्ण है। अब देखिए विदुरानी का क्या हालत हुआ रहेगा, अभी कृष्ण को देख के संभ्रमित हो गए, अभी क्या करे, हाँ अचानक आ गए, कुछ तैयारी नहीं है, भगवान आ रहे, भगवान को कैसे स्वागत करना है, कुछ उनके मन में बहुत सारा विचार एक साथ में आने लगा। संभ्रम में उन्होंने क्या किया, कृष्ण को कुछ भी नहीं, आओ बैठो, कुछ बात नहीं, वो संभ्रमता से अंदर गई, जाके वो केला लेके आई, उसका क्या किया, केला को छिलका निकाला और केले को फेंक दिया और छिलका दिया, और कृष्ण क्या कर रहे, वो छिलका खा रहे। तो इसको संभ्रमा कहा जाता है। तो इस संभ्रमता में वसुदेव ने निश्चय किया मुझे उत्सव करना है, मुझे उत्सव मनाना है। तो उत्सव कैसे मनाएंगे, तो उत्सव मनाने के लिए जैसे कोई उत्सव होता है उसमें बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत सबसे पहला दान दिया जाता है। तो वसुदेव सोचने लगे मुझे दान करना है, अभी दान करने का मौका कहाँ है, उनके पास कोई कुछ भी नहीं है, जेल के अंदर है। तब वसुदेव उस संभ्रमता में एक बड़ा उत्सव मनाया, कैसे मनाया उस उत्सव को, मुदा आप्लुतो, मुदाप्लुतो, मुदा का अर्थ है बड़े आनंद में, भगवान का सुंदरता को देख के उनके मन में जो आनंद आया, जो सुख का अनुभव हुआ, उस आनंद का अनुभव में क्या किया, उन्होंने ये उत्सव मनाया। मान लीजिए किसी घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, एक सूतक होता है, या कोई उत्सव मनाने से पहले कम से कम उसको नहाना चाहिए, तो तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वसुदेव कहाँ नहाए, जेल में थे, कहाँ जाके नहाए। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं मुदा आप्लुतो, मुदा आप्लुतो, ये दोनों शब्द को मिला के कहते हैं जो कृष्ण का दर्शन से उनके मन में जो आनंद का अनुभव हुआ, वो आनंद का जो रस है उसके द्वारा वो नहा लिए। वो नहा के उन्होंने क्या किया, द्विजेभ्यो आयुतम गवान, विजेभ्यो, विजेभ्यो अनेकों अनेकों ब्राह्मणों को उन्होंने क्या किया, गायों को दान दिया। कितने गायों को दान दिया? आयुतम 10,000 गायों को दान दिया। लेकिन कैसे दान दिया? तीसरा लाइन का आखिरी शब्द में कहा गया है अस्पृशन। अस्पृशन का अर्थ है स्पर्श किए बिना। मान लो कोई चीज को दान दिया जाता है, हाथ से स्पर्श करके दिया जाता है, लेकिन वसुदेव ने कैसे दान दिया? उन्होंने अस्पृशन, कोई स्पर्श किए बिना, यानी कि उनके मन ही मन ही उन्होंने दान कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो इस प्रकार के मन ही मन में भक्ति करना, ये भी भक्ति का अंग है। क्योंकि भगवान कौन है? अद्वयम। जैसे भागवत के पहले श्लोक में कहा गया है सत्यम परम, अद्वय ज्ञान है। अद्वय तत्व होने के नाते उनके संबंध में कोई भी कार्य जो है वो अद्वय हो जाता है, यानी उसके अंदर भेद नहीं रह जाता है। या भगवान को आप एक आम अर्पण करो, स्थूल रूप में आम लेके अर्पण करो, या मन ही मन में आप भगवान को कोई आम को अर्पण करो, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? भगवान अद्वय होने के नाते वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। और प्रभुपाद जी दूसरा कारण बताते हैं कि सारे इंद्रियों का मूल केंद्र क्या है? मन है। तो अगर आप इंद्रियों के द्वारा कुछ कार्य करो या मन के द्वारा कुछ कार्य करो, क्योंकि सारे इंद्रियां मन में सूक्ष्म रूप में होने की वजह से मन से किया गया जो कार्य भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये दो कारण श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि एक तो भगवान अद्वय होने की वजह से, दूसरा मन जो है वो सारे इंद्रियों का मूल केंद्र होने की वजह से मन से किया जो कार्य जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है, उतना ही सही माना गया है। भक्तिरसामृत सिंध में उदाहरण दिया गया है, एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था। उनके मन में एक इच्छा हुई, मैं भगवान को खीर भोग लगाऊं। तो क्या कर रहे थे? मन ही मन में उन्होंने सोचा, दूध खरीदा, दूध को उबाला, उसके अंदर चावल डाला, उसको और पूरा उबालते उबालते उसके अंदर शक्कर डाल के सब खीर बनाया। बना के मन ही मन में उन्होंने खीर को एक लोटे में वो जो बर्तन में डाला, तुलसी पत्ता रखा और भगवान को भोग लगाने जा रहे थे। उनके मन ही मन में ये और एक संशय आया कि मैं देखूं एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ठंडा करके भगवान को भोग लाना चाहिए, चलो मैं देखता हूँ कितना गर्म है। तो मन ही मन में वो अपनी उंगली को उस खीर में स्पर्श करने के लिए उंगली रखे और जैसे कितना गर्म था तो तुरंत उनका ध्यान खुल गया और हाथ उठा के देखे उनका हाथ जल गया था। तो ये जो है ये बहुत ऊंचे लेवल पे इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है कि भगवान जो है वो दिव्य होने के नाते वो कहीं भी आके वो प्रकट हो सकते हैं। भगवान का जो 8 प्रकार के जो चीजों के द्वारा उनका विग्रह का निर्माण होता है, मिट्टी में, पेंट में, पत्थर में, अलग अलग तरीके से रेती में, और भी मन में भी जो भगवान का जो दृश्य होता है वो भी विग्रह ही माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मन ही मन में भगवान का विग्रह का रूप धारण करके उसको भोग लगाने के लिए प्रयास करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है। लेकिन साधक अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार करना चाहता है तो वो थोड़ा सा इतना उचित नहीं है। तो लोग सोचेंगे कि कुछ लोग कहते हैं, हम बोलेंगे प्रभु जी आप भगवान को भोग लगा के खाओ। नहीं प्रभु जी, हम मन ही मन में करते हैं, मन ही मन में भोग लगाते हैं, बैठते हैं मन ही मन में भोग लगाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए इतना उचित नहीं है क्योंकि उनका इतना ऊंचा स्तर नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा जब कहते हैं हम मन ही मन में भोग लगाते हैं, तो जनरली मैं उन लोगों को इस प्रकार जवाब देता हूँ, ठीक है हाँ आप जो मन ही मन में भोग लगाया ना वही चीज को खाओ। नहीं, वो नहीं खाएंगे, खाएंगे एकदम स्थूल चीज है, लेकिन हम बोलते मन ही मन में भोग लगाएंगे। तो बड़े ही इस प्रकार की भक्ति है, जैसे जप भी है, मानसिक जप करके भी है, वो बहुत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतने सारा अनर्थ होने की वजह से ये जो मानसिक जप हम नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक प्रकार की भक्ति है कि मन ही मन में इन ब्राह्मणों को 10,000 गायकों ने दान किया। लेकिन इन सब का मूल कारण क्या था? भगवान की सुंदरता। भगवान की सुंदरता का दर्शन की वजह से सबसे पहला वसुदेव एकदम उन्होंने आश्चर्य रस का अनुभव किया, उसके द्वारा उनको मन में आनंद का अनुभव हुआ, उस आनंद की वजह से संभ्रम का अनुभव हुआ, उस संभ्रम की वजह से उन्होंने क्या किया, ये मन ही मन में ब्राह्मणों को 10,000 गायों की दान उन्होंने किया। तो आगे के श्लोकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार वसुदेव इस प्रकार का दान देने के बाद कृष्ण के साथ उनका संवाद होता है, क्या संवाद है और कृष्ण ने उनको क्या आज्ञा दिया, वो सब चीजें हमको इस अध्याय में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? नहीं क्वेश्चन? सात प्रकार के गौण रस क्या है? तो ठीक है, मैं अभी मेरे पास पूरा वो लिस्ट अभी याद नहीं है पूरा, लेकिन बताऊंगा। एक है भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये भक्ति रसाम ने प्राप्त होता है, और अद्भुत और कौन सा है, रौद्र, क्रोध, ये भी कभी गुस्सा हो जाना, और पांच हुआ और दो कौन सा, हास्य, हास्य रस सिक्स्थ, और एक कौन सा, आश्चर्य, ये भी है। अद्भुत और आश्चर्य दोनों एक ही है, अद्भुत रस और आश्चर्य दोनों एक ही है। अद्भुत रस मीन्स आश्चर्य, कुछ है जैसे सेवन, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेम्बर, लोगों को बोलता हूँ मेमोराइज करो, लेकिन अभी मेरा मेमोरी जा रहा है, बुढ़ा पा रहा है। इट इज देयर इन द भक्ति रस सामने, यू कैन सी दैट। और कोई नहीं, मोर क्वेश्चन? तंत्राश्रम भागतम की श्री प्रभुपाद की जय।
Okay, I don't need to...